Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331-4444 or 2331-0481 and 2371-7106. And if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add prefix 011 as the code before these numbers. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra.
धन्यवाद लालिमा और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह हम आपके प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार जगत, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. और जैसा कि लालिमा पहले बता चुकी हैं कि किसी खास कंपनी के शेयरों से जुड़े हुए सवालों के जवाब हम नहीं दे पाएंगे. दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
धन्यवाद सुबोध जी.
पहले हेडलाइंस लालिमा से.
थैंक यू सुबोध. यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस राइट अवे. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस इंक्रीज ओवर 1%. सेंसेक्स गेन्स ओवर 900 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स अबव 23,400. India's wholesale inflation rises to 2.13% in February this year, and global crude oil prices display a mixed trend.
देश के शेयर सूचकांकों में 1% से ज्यादा की बढ़त. सेंसेक्स 900 अंकों से अधिक उछला. निफ्टी 23,400 के पार पहुंचा. भारत की थोक मुद्रास्फीति दर फरवरी में 2.13% बढ़ी और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में मिला जुला रुख.
All right, so before we get going with the program, let's have a disclaimer for our listener friends. Friends, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और लालिमा, शुरू करते हैं सबसे पहले शेयर बाजारों का हाल. देश के शेयर बाजारों के सूचकांकों में आज काफी उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन अंत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 939 अंक बढ़कर 75,503 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 258 अंक ऊपर 23,409 पर पहुंच गया. दोनों ही सूचकांक 3 कारोबारी दिनों तक लगातार नुकसान में रहने के बाद आज बढ़त के साथ बंद हुए. आज कारोबार की शुरुआत थोड़े नुकसान के साथ हुई और कुछ देर बाद थोड़ी देर सकारात्मक रहने के बाद सूचकांक फिर से नुकसान में चले गए. दिन भर उतार चढ़ाव कायम रहा, लेकिन कारोबार के आखिरी घंटे में लिवाली का जोर बन गया और निचले स्तरों पर बढ़िया खरीदारी से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1.1% से ज्यादा की बढ़त देखी गई.
Benchmark domestic equity indices staged a sharp late recovery today and ended over 1% higher. The Sensex surged 939 points to close at 75,503, while Nifty climbed 258 points to settle at 23,409. Both the indices snapped their three-day losing streak. Earlier, the markets opened marginally lower and briefly traded with gains before slipping into negative territory. The indices attempted a recovery but continued oscillating between gains and losses for much of the day. However, market sentiment strengthened in the final hour, with bulls taking control and driving a sharp rebound supported by value buying at lower levels.
और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों के शेयर आज मुनाफे में रहे। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों पर गौर करें, अल्ट्राटेक सीमेंट में 4.2%, ट्रेंट में 3% और एचडीएफसी बैंक में लगभग 2.9% की बढ़त देखी गई। इसके उलट बीएल में 2.3%, सन फार्मा में लगभग 0.25% और पावर ग्रिड में 1% की गिरावट रही।
Among the sectoral indices at the BSE, 14 out of 25 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, top 10 banks jumped 1.6%, financial services rose more than 1.3%, and auto climbed over 1.2%. Conversely, oil and gas fell 2.3%, hospitals dropped over 1.6%, and realty dipped 1.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,860 companies declined, 1,509 advanced and 168 remained unchanged. And so, rupee.
हाँ, रुपए का हाल ये है कि आज विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 92.42 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच गया। छह अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती दिखाने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 100.01 पर कारोबार कर रहा था। और चले हम अपने पहले कॉलर के पास, बेंगलुरु से एनआर प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर
जी।
हेलो लालिमा जी, हेलो सुबोध जी,
हेलो
दीपशिका,
हेलो।
देयर आर टू क्वेश्चंस। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, any specific reason the market rallied today by almost by 1.25%? But I was just analyzing that IT sector fallen, but some of the other sectors rallied very well. Any specific reason for this? My second question is, see, during the AI summit, many of the companies are tied up with the Indian companies, but largely the IT sector of the corresponding US companies rallied very much. In fact, I bought those also. How they would going to fare in the next quarter, say April to June? Thank you. These are my two questions.
Mr. Prasad, the market, you know, if you watched over the past few days and over past few sessions, the geopolitical overhang was weighing on the markets. And investors were waiting to, you know, get into it when it reached the bottom. And probably, I think the sense was that because it has reached its bottom right now, let us pick up some key stocks. So if you see, mid-caps are still very down. They did not rise. Only select stocks rose. So that is the answer to your first question. On the second questions, definitely AI is the future. So companies having that interface are expected to do well. But in short term, like 3 months or 4 months, we have to see how, you know, the geo-economic and geopolitical climate sort of goes going forward.
दीपशिखा, जैसा अभी ये भी पूछ रहे थे कि रैली के पीछे ट्रिगर्स क्या थे और कैसे थे, वैसे हमने खबर में भी यही बताया कि जो निचले स्तरों पर ली वाली देखी गई थोड़ी गिरावट के बाद, जो पिछले 3 कारोबारी दिनों का था, शायद थोड़ा उसका असर रहा हो। शुरू में थोड़ी निराशा थी, लेकिन बाद में ली वाली बनी तो थोड़ा तो बाजार उठा है।
बिल्कुल, बाजार में इस समय जैसा कि है, कुछ एक जो आपके लार्ज कैप्स हैं, सिलेक्ट स्टॉक्स हैं जिनको आप बहुत दिनों से खरीदने का सोच रहे हैं, तो अगर आपके पास कैश है तो लोगों ने वही किया है कि कुछ एक जो ब्लू चिप्स हैं या लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनमें आज इसीलिए देखा गया कि खरीदारी हुई,
क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो सिग्नल्स हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव तो दिख नहीं रहा है,
उनमें बहुत बदलाव नहीं है, इसीलिए लोगों को लग रहा है कि अब ये तो शायद लंबा खिंचेगा, तो हम अगर देख लें कि किस हिसाब से जाता है।
राइट, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन एंड वी आर नाउ जॉइंड बाय नवल किशोर कॉलिंग अस फ्रॉम जयपुर। यस नवल जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। या
गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम।
गुड इवनिंग जी।
आई हैव टू फ्यू क्वेरीज। पहली तो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो आज वर्ल्ड वार की सिचुएशन है, इसमें बैंकिंग सेक्टर कैसा रहेगा और गोल्ड का कुछ गोल्ड ETF मैंने परचेज किए, उनका भविष्य क्या होगा? और ये टाइम अभी कुछ स्क्रिप्ट खरीदने का है, यदि खरीदे तो कौन से सेक्टर में? थैंक यू
नवल जी. इस समय जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे इसके ऊपर, जो स्थिति बाजार में इस समय बनी हुई है, अधिकांशतः कैश पे रख कर अपने पास बैठने का समय है, लेकिन वो खरीदा जाए जो आप बहुत समय से टारगेट कर रहे हैं, जो ब्लू चिप है, जो आपके लेवल पर अब अवेलेबल है, लार्ज कैप्स हैं जो कि सेफ बेट हैं. कुछ एक क्षेत्र है, अब डिफेंस जैसा क्षेत्र है, वो हो सकता है आपको अच्छे रिटर्न दे आगे आने वाले समय में जिस तरह की परिस्थिति बन रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा क्षेत्र है जहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप का कोई मनपसंद है, जो कोई कोई स्टॉक है जिसको आप नजर रखे हुए हैं जिसके ऊपर, तो इस तरह के जो क्षेत्र हैं उन पर नजर रखी जा सकती है. बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, अगर आप देखें पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है जहां तक NPAs का सवाल है, तो उनसे अपेक्षित है कि आगे जिस तरह से ये जो लड़ाई के बादल है ये छटते हैं तो ये क्षेत्र अच्छा परफॉर्म करेगा.
जी अगले कॉलर है दिल्ली से अमित, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
हेलो
जी अमित जी, सवाल पूछे.
हाँ सुबोध जी नमस्कार सर.
नमस्कार
लालिमा मैम नमस्कार.
नमस्कार जी. नमस्कार अमित जी.
शिखा मैडम से प्रश्न ये है मेरा कि मैडम जैसे कि अभी मौजूदा समय में जो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो वार्ता होने वाली है ये कितना महत्वपूर्ण किन मुद्दों पे चर्चा हो सकती है? दूसरा मैडम कि जो हमारे देश के व्यापार घाटा जो है अभी मतलब बढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि जैसे कि मार्च के महीने में तो अभी हमने क्रूड और ऑयल ज्यादा महंगे रेट पे इम्पोर्ट करा है, तो हमारा इम्पोर्ट बिल तो और भी बड़ा होगा, तो हमारा राजकोषीय घाटा कैसे नियंत्रित करेंगे? अभी तो 63.73 अरब डॉलर का इम्पोर्ट है और 36 अरब डॉलर का निर्यात है, एक्सपोर्ट है. थैंक यू मैम.
अमित जी ये सवाल जो आपने किया कि ट्रंप और शी की जो वार्ता होने वाली है इसमें इसको हम क्या देखते हैं और क्या मुद्दे रहेंगे. देखिए जो वैश्विक स्थिति है, अमेरिका और चीन के बीच जो डिफरेंसेस रहे हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी. और ये वार्ता में अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो रहेगा, जो मिडिल ईस्ट का इशू है, जो लड़ाई चल रही है, उसको रिजॉल्व किस तरह से किया जाए, तो ये मुद्दे रहेंगे. लेकिन ये देखना है कि वार्ता कब हो पाती है, क्योंकि जिस तरह की शर्त रखी गई है उसमें चीन उसके लिए तैयार होता है, इस वार्ता के लिए इस समय नहीं होता है, क्या स्थिति बनती है. तो ये अनिश्चितताएं जो जियोपॉलिटिक्स में इस समय बन रही हैं वो मतलब वही सारे वैश्विक परिस्थिति को गवर्न कर रही हैं. और
ट्रेड डेफिसिट
की जो आपने बात की, तो पिछले महीने से इस महीने कम है, हालांकि अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखें तो बड़ा है, लेकिन अगले महीने जैसा कि आपने भी कहा वो बढ़ेगा. भारत जो है आयात पर काफी हद तक निर्भर है और वो एक हमारे लिए एक चुनौती भी है, एक हमारी सच्चाई भी है जिसके साथ हमें जीते हैं. जब तक कि क्रूड पर हमारी निर्भरता बनी रहेगी ये हमें तंग करता रहेगा.
और ये निर्भरता तो अभी
कायम रहेगी. और चूंकि अनिश्चितता है, हमारा निर्यात उस स्तर तक उसको भी चुनौती हो रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट हमारा बहुत बड़ा बाजार था, वहां नहीं हम कर पा रहे हैं.
बट दीपशिका क्विक कमेंट, द फैक्ट दैट वी हैव वेरी गुड फॉरेक्स रिजर्व्स, इज दैट अ बिग सॉलेस फॉर अस?
दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट, बट डेफिनेटली यू नो गोइंग फॉरवर्ड इफ देर आर कॉन्टिन्यूस प्रेशर्स, इफ foreign investors pull out, there is going to be pressure on that.
All right. Let's move over to Bhopal and Shankar has joined us. Yes, Shankarji, please ask your question. Yeah.
Good evening, Market Mantra team. Madam, is there any study on how much on Sensex or Nifty there is an influence of geopolitical factor as a pie chart in comparison to, say, performance of the market, future prospects of the market, or demand or supply, whatever is, I mean, whatever is affecting Nifty or Sensex, what is the, how much is the effect of a geopolitical factor? Is there any study on it? And the other thing is that Forex, that we don't have to worry about Forex, so much of it. It's better, we should better plug our loopholes, like we should highly promote the dollar cooker, solar energy, you know, cars, etc., etc. So that we can at least import. So forex exchange hona jada hona koi badi baat nahi, do din mein khatam ho jayega, do char mahine mein khatam ho jayega in case aisi situation chalta raha to. Thank you.
बिल्कुल शंकर जी, जैसा कि आपने कहा, आपने ग्रीन एनर्जी की बात की है और भारत तो एक यहाँ पर सोलर एनर्जी पर एम्फेसिस होना ही चाहिए. और दूसरा सवाल जो आपका था, बाजार की जो स्थिति है, जियोपॉलिटिक्स की जो स्थिति है, वो तो उसके बारे में इस समय कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या करवट वो लेगी. और इसका जो स्टडी है वो सरकार की तरफ से, रेगुलेटर्स की तरफ से बराबर किया जाता है, लेकिन ऐसा वो पब्लिक डोमेन में नहीं है कि उसका कितना असर मार्केट पर हो रहा है. लेकिन रेगुलेटर्स इस पर नजर रखते हैं कि कितना इम्पैक्ट होता है. लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं, प्राइवेट एनालिस्ट जो हैं, उनके पास ये स्टडीज जो हैं इस तरह की रहती हैं कि जब कभी ऐसा संकट आया तो इतना बाजार गिरा और कब वापस आया. तो वो आपको प्राइवेट जो एडवाइजर्स हैं, प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां से ये स्टडीज आपको मिल सकती
हैं. अनुष्का, डोंट यू थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, द फैक्ट दैट वी हैव अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड वी हैव मेट अ लॉट ऑफ आवर टारगेट्स ऑन द सोलर एनर्जी फ्रंट, वी आर ऑल्सो इन टू विंड एनर्जी एंड ऑल दैट ऑल्सो, बट इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस प्रोबेबली.
अभी काफी कुछ होना बाकी है,
बहुत कुछ हुआ है, लेकिन स्कोप बहुत है क्योंकि देश हमारा इतना बड़ा है.
Right. और अगली खबर पे नजर डालते हैं, एशियाई बाजार का क्या हाल रहा. आज एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिला क्योंकि निवेशक कच्चे तेल की कीमतों और पश्चिम एशिया में संघर्ष को लेकर सजग दिखाई दिए. हांगकांग का हैंगसेंग 1.4% से अधिक बढ़ा, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.1% से ज्यादा ऊपर आ गया, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.5% से ज्यादा चढ़ा. इसके उलट चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग 0.3% गिरा और जापान का निक्केई 0.1% मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ. प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में भी आज समाचार लिखे जाने तक मिला जुला कारोबार दिख रहा है. लंदन का फुटसी 0.4% से अधिक ऊपर था, जर्मनी का डैक्स लगभग 0.4% बढ़ा हुआ था, जबकि फ्रांस का कैक फ्लैट चल रहा था. और अगले कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से, वीरेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
हेलो
जी वीरेंद्र, स्वागत है आपका.
नमस्ते सर. नमस्ते सभी जो हमारे समूह के अतिथि हैं. नमस्ते
जी. नमस्ते पैनल को.
मैडम मेरा ये है कि किसी कंपनी में जो प्रमोटर होते हैं वो प्रमोटर और ओनर में कुछ फर्क होता है या दोनों एक ही होते हैं, पहला तो ये. और दूसरा, जो हम ऐप से, ऐप के माध्यम से जो शेयर खरीदते हैं उसमें लिखा आता है कि जैसे सेक्टर रिटर्न 5%, 10%, मार्केट रिटर्न इतना है, वन ईयर इतना रिटर्न है, तो इनमें क्या मतलब, इनका क्या
शाब्दिक अर्थ है? जो देखिए, जब हम कोई कंपनी बनाते हैं तो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, हम उसके शेयर होल्डर हैं, हम मालिक हैं. तो प्रमोटर ओनर ये आप उसको एक दूसरे से वो एक जैसे टर्म्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसका.
और ये जो बोलते हैं वो ऐप पे दिखाई देता है कि ये सेक्टर का इतना है, इंडेक्स ऐसा रहा है, ये इतना बड़ा है, इंडेक्स का इतना रहा और इस शेयर का ये परफॉर्मेंस, तीनों के परफॉर्मेंस जो दिखा रहे होते हैं.
ये परफॉर्मेंस जो है ऐप में, वो चूंकि AI और टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो वो अपने आप बता देता है कि देखिए इंडेक्स ने इतना रिटर्न दिया, इस शेयर में, इस कंपनी में इतना आपका रिटर्न दिया
और
है,
इसके सेक्टर में इतना,
इसके सेक्टर में इतना रिटर्न दिया. और वो पीरियड भी वहां पर मेंशन रहता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो
जी.
तो निवेशक जो है उस पे एक जो है डिसीजन ले सकता है, ये सब देख करके स्टडी कर सकता है
जी. और दीपशिखा, अब आप जब अभी प्रोमोटर और ओनर की बात बता रही थी तो एक मजेदार बात मेरे दिमाग में आई कि चूंकि आप जब शेयर खरीद रहे होते हैं दरअसल आप भी उसके एक छोटे से हिस्से का ओनर बन रहे होते हैं, तो ओनर आप भी हैं, प्रमोटर
वो हैं.
राइट. वी आर जॉइंड बाय जितेंद्र जी, ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम जयपुर. यस जितेंद्र जी, आपका सवाल जी.
हाँ मैडम, जैसे गोल्ड और सिल्वर या मेटल सेक्टर में आएगा, अच्छा, और दूसरा की निफ्टी 100 में मेटल सेक्टर का कोई स्टॉक है क्या?
कहने गोल्ड और सिल्वर क्या मेटल सेक्टर के अंदर आएगा?
गोल्ड सिल्वर डेफिनेटली प्रेशियस मेटल्स में आता है, गोल्ड एंड सिल्वर. और गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ने बहुत लाभ दिया है, बहुत निवेशकों को लाभ दिया है. कुछ एक कंपनियां हैं लेकिन मैं कंपनियों का नाम यहां मेंशन नहीं कर सकती हूं, आपको देखना पड़ेगा, जो कि निर्यात क्षेत्र से जुड़ी हुई है लेकिन वो गोल्ड और सिल्वर में कार्य करती हैं.
जी जी, अगली खबर पे आते हैं हम. देखें थोक मूल्य सूचकांक क्या बता रहे हैं. देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष फरवरी में वार्षिक आधार पर बढ़कर 2.13% हो गई, जबकि जनवरी में यह 1.81% थी. मासिक आधार पर थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति पिछले महीने घटकर 0.25% हो गई. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने मुद्रास्फीति की वृद्धि मुख्य रूप से धातु और अन्य क्षेत्रों के विनिर्माण, गैर खाद्य वस्तुओं और वस्त्रों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है. अन्य प्रमुख वर्गों पर गौर करें तो WPI में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्मित उत्पादों में पिछले महीने 2.92% की वार्षिक मुद्रास्फीति दर दर्ज की गई. प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रास्फीति जनवरी में 2.21% थी, जो फरवरी में तेजी से बढ़कर 3.27% पर पहुंच गई.
लेट्स टॉक अबाउट कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट. वेल, कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट और UR एज वी कॉल इट फॉर पर्सन्स एज्ड 15 इयर्स एंड अबव ईज्ड टू 4.9% इन फरवरी दिस ईयर फ्रॉम 5% इन जनवरी. According to Ministry of Statistics and Program Implementation, monthly labor force and unemployment data, the rural unemployment rate remained stagnant at 4.2%, while urban unemployment declined to 6.6% last month from 7% in January. And let's talk about our exports. Well, India's overall exports combining merchandise and services increased by 5.8% to over $790 billion on an annual basis during the last 11 months of this fiscal year. And now let's move on to Sanjeev, who's calling us from Ghaziabad. Yes, Sanjeev ji, please ask your question. Yeah.
जी नमस्कार मैम.
नमस्कार जी. जी जी
जी, मेरा सवाल ये है कि जो CPI इंडेक्स जो अभी आया है 3.2 का हमारा इन्फ्लेशन डेटा है, उसमें RBI ने अपना एक बेस ईयर चेंज किया है, वो नया बेस ईयर क्या है, और दूसरा कितनी चीजें हमने एक्सक्लूड करके कितनी चीजें इंक्लूड की हैं जो जिससे डेटा हमारा जो अब चेंज हुआ है ये, प्लीज.
देखिए, अगर बेस ईयर आपने देखा होगा, ये RBI ने नहीं किया है, ये सरकार का जो स्टैटिस्टिकल डिविजन है उसने किया है. और ये तकरीबन कुछ वर्षों बाद जो है बेस ईयर को चेंज करना पड़ता है, बास्केट को चेंज करना पड़ता है, ताकि सही स्थिति जो है मुद्रास्फीति की वो उसको दर्शाया जा सके, उसको पॉलिसी मेकर्स को जानना होता है. क्योंकि कई प्रोडक्ट्स हैं जो अब आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे पेजर्स जो हैं जो इन्फ्लेशन बास्केट में थे वो अब इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो नए प्रोडक्ट्स को लाया गया है. बेस ईयर को जो है 2024 को चेंज किया गया है, ताकि नए उसको नए ईयर के तहत उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे और एक डेटा जो है अपडेटेड मिले.
Alright, move on. Indian vessel Shivalik carrying LPG reached Mundra port in Gujarat this evening. Addressing the inter-ministerial briefing on recent developments in West Asia and New Delhi, Special Secretary at the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Rajesh Kumar Sinha, said the documentation and priority berthing has been arranged at the port to ensure no delay in the discharge of cargo by LPG carrier Shivalik today. He also informed that another Indian vessel carrying LPG Devi will arrive tomorrow.
In the DG Shipping, we are keeping continuous watch on the situation. We are in touch with each vessel and its crew. The Indian flag vessel Jag Ladki, which sailed from UAE on 14th of March, is carrying about 81,000 of Murban crude oil, is safely en route to India and will be reaching tomorrow at Mundra port.
and government has paid a compensation of 30,000 crore rupees to oil marketing companies in 2025-26 to ensure affordable LPG prices to consumers. Minister of State for Petroleum and Natural Gas Suresh Gopi said this in a written reply to a question in Rajya Sabha. And let's talk about crude oil. Well, global crude oil prices traded mixed today. Brent crude was trading over 0.3% up at $103.50 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading over 1% down at $97.57 per barrel when reports last came in. Meanwhile, conflict in West Asia continued to disrupt oil production and shipping, despite US President Donald Trump's call for global efforts to secure the vital Strait of Hormuz. Yesterday, the International Energy Agency, IEA, said its member countries will release large amounts of oil from emergency reserves to help lower global prices. And in a statement, the agency had said that countries in Asia and Oceania will start releasing oil immediately, while reserves from Europe and the Americas will begin to be released at the end of this month. It said this coordinated move is the largest emergency oil release ever, providing a strong buffer for global supply. So, Deepshika, some solace again there that IEA is coming forward to release large amounts of oil from the emergency reserves.
I think the entire effort globally is to keep the crude oil prices in check, because otherwise the global economy is going to be very badly hit. And I think that is the effort which is sort of being driven, because now the conflict is, it looked very short in the beginning, but it looks like it's going to stretch for some time. Mm-hmm. And that is a very crucial point, a very important concern for crude. That is a region which supplies most of the crude to world.
Yeah, sari duniya ki saanse Hormuz jal tamru madhye pe atki hui
hai. Bilkul atki padi hai ki kab ye samasya jo hai ye isko resolution tak pahunch paye.
Aur Lalima, sone chandi ka bhi haal bata do.
Ha, mujhe samajh gaye aapka. Yes, certainly I think many women of course will be more interested in this. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading over 1.6% down at 1,56,510 rupees per 10 grams, while silver was trading over 3.1% lower at 2,51,670 rupees per kilogram a short while ago.
Aur MCX में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना 1.7% गिरकर 1,55,740 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, और चांदी भी 3.1% के नुकसान से 2,51,228 रुपए प्रति किलोग्राम पर दर्ज हुई.
Yes, what would you say about the prices of gold and silver? It is always said, हलचल अगर दुनिया में मचे तो gold silver के लिए अच्छा है.
Absolutely, and the entire year that's what we've seen. You know, geopolitical concerns and central banks were buying, so we sort of saw yellow metal rise, and we also saw silver rise.
Yes,
लेकिन MCX में ये दोनों गिरे हैं.
ये अब करेक्शन देखने को मिल रहा है, बिकॉज लग रहा है कि जो भी क्राइसिस था वो प्राइसिंग कर लिया गया है. तो अब जो है ऐसा लग रहा है कि ये जो बहुत ज्यादा तेजी आई थी, अनलेस कुछ बहुत और अनटूवर्ड हो, थोड़ा सा अप करेक्शन रहेगा.
यस दीपिका, द जोक हैज बीन
गुड न्यूज,
सिल्वर हैज बिकम न्यू गोल्ड.
यस,
सिल्वर हैज बीन अ सरप्राइज.
दीपिका, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए, सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद.
थैंक्स दीपिका. वेल फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस इंक्रीज ओवर 1%. सेंसेक्स गेन्स ओवर 900 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स अबव 23,400. इंडियाज wholesale inflation rises to 2.13% in February this year, and global crude oil prices display a mixed trend. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Subodh Mishra, and our expert, Deepshika Sikarwa, signing off for now. Namaskar.
Namaskar.